नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली NIDMS का शुभारंभ किया। उन्होंने इस प्रणाली को आईईडी रोधी और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
NIDMS एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से देश भर के बम विस्फोटों के सटीक एनालिसिस को संगठित करना, संकलित करना, मानकीकृत संयोजन करना और सुरक्षित तरीके से इसको सबके साथ साझा करना, ये प्रक्रिया NIDMS से एक प्रकार से मजबूती के साथ प्रस्तापित होगी।
श्री अमित शाह ने कहा कि इस प्रणाली से एजेंसियों के बीच आंतरिक समन्वय और बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि NIDMS देश भर में आतंकवाद रोधी दस्ता इकाई, पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को ऑनलाइन डाटा तक पहुंचने और उसके उपयोग में सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आज उत्तर प्रदेश में अपने निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में विद्युत वाहन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने कई नियमों को सरल बनाया है और कई ऐसे आवश्यक कदम उठाए हैं जिससे निवेशकों और व्यवसायियों का भी विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पहले वार्षिक रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रूपये था, जो अब बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रूपये सालाना हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3 दिन की गुजरात यात्रा पर जाएंगे। श्री मोदी शाम को सोमनाथ पहुंचेंगे और ओंकार मंत्रोच्चारण में शामिल होंगे। वे सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो भी देखेंगे। प्रधानमंत्री रविवार को शौर्य यात्रा में भाग लेंगे। ये यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अनगिनत योद्धाओं के सम्मान में आयोजित की गई है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA ने एक रिपोर्ट में कहा है कि उपभोग और सार्वजनिक निवेश के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रहने की उम्मीद है। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2026 रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2026-27 वित्त वर्ष में 6.6% और 2027-28 वित्त वर्ष में 6.8% रहेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने IPAC प्रमुख प्रतीक जैन के कार्यालय पर कल हुई तलाशी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ED के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन और शेक्सपियर सरनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इस बीच ईडी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने प्रतीक जैन के परिसर पर हुई छापेमारी में बाधा डाली। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में सुरक्षा बलों ने आज संदिग्ध गतिविधियों का पता लगने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि कटली क्षेत्र में हथियारों से लैस एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में सूचना मिलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया। विशेष अभियान समूह पुलिस और CRPF के एक संयुक्त दल ने जम्मू के मीरा साहिब सीमा क्षेत्र में संयुक्त जांच अभियान भी चलाया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में समकालीन वैश्विक घटनाक्रमों पर श्री मैक्रों के विचारों और रणनीतिक साझेदारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। विदेश मंत्री ने फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बहुध्रुवीयता और रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने में भारत फ्रांस साझेदारी के महत्व पर भी चर्चा की।
Apart from our bilateral ties, we are both very...
द्विपक्षीय संबंधों के अलावा दोनों राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अत्यंत सक्रिय हैं। हम ब्रिक्स और G7 की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम दोनों G20 के भी सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त हम अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
PV सिंधु मलेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। जापान की अकाने यामागुची के मैच से हटने से पहले सिंधु ने पहला गेम 21-11 से जीत लिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।